हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 90 सक्षम की ये बात सुनकर शिवानी ने तुरंत ही चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी वीरेश को ढूंढने के लिए जाना चाहती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ, तो उसे लगता है अगर वीरेश यहां पर वापस आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए सक्षम की तरफ देखते हुए उसने कहा, हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी, लेकिन हमें गुरुजी से अनुमति लेकर जाना चाहिए, हम वीरेश की गलती नहीं दोहरा सकते। हाँ बिल्कुल, गुरुजी की अनुमति के बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम में, वैभव और जितने भी लोग हमारे साथ चलना चाहें उन सबको मुझे तैयार करना है। देखता हूँ कितने लोग साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, उसे हिसाब से फिर गुरुजी से बात करेंगे हम। सक्षम ने बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हुए कहा और शिवानी भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। वो दोनों वापस में बात कर ही रहे थे तभी आश्रम के प्रवेश द्वार पर काफी ज्यादा हलचल की आवाज आई। लोग आपस में बात कर रहे थे और इधर उधर भागते हुए नजर आए, तो चंद्रिका और सक्षम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सक्षम अपनी जगह पर उठकर खड़ा होता हुआ बोला, वहां पर क्या हो रहा है? शिवानी, तुम यहां पर ही रुको, मैं देखकर आता हूं। सक्षम ने उसे वहां पर ही रुकने के लिए बोला। शिवानी भी उसकी बात सुनकर वहां पर ही रुकी रही, क्योंकि उसे सजा मिली है तो वो इस तरह आश्रम में होने वाली सारी घटनाओं में भाग नहीं ले सकती और ना ही हर जगह पर आ जा सकती, इसलिए वो चुपचाप वहां पर बैठी रही। उसे पता था कि सक्षम उसे बता देगा। सक्षम वहां से आगे आया और उसने जो देखा, दरवाजे के पास बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, जिनमें से कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ पैदल ही, लेकिन वो सब उनकी तरफ ही बढ़ते आ रहे थे। और सबसे पहले आगे एक बहुत ही बड़ा ऊंचा सा काले रंग का एकदम शानदार घोड़ा था, जिस पर महाराजा महेंद्र प्रताप बैठे हुए उसी तरफ ही आ रहे हैं। उन्हें वहां पर देखकर सक्षम और आश्रम के बाकी सारे शिष्य समझ गए कि जरूर वो गुरुजी से ही मिलने के लिए आए हैं, और वो उनके दरवाजे के एकदम नजदीक पहुंच जाते उससे पहले ही कुछ सैनिक आगे वहां पर आ गए और उन्होंने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा, महाराज महेंद्र प्रताप पधार रहे हैं। राजा के कहीं भी आने जाने पर इस तरह की घोषणा हर जगह पर ही होती है, जहां भी राजा आते जाते हैं, और इस वक्त भी ये घोषणा हुई जिससे कि वहां के सारे लोग उनके स्वागत और सम्मान के लिए तैयार हो जाएं। राजा एकदम आश्रम के प्रवेश द्वार के पास अपने घोड़े को रोककर घोड़े से नीचे उतरे और अंदर आए। सभी लोगों ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा वहां से आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ काफी सारे लोग हैं। अंदर आते हुए राजा ने कहा, हमें महात्मा गुरुजी से मिलना है। आइए महाराज, आइए, हमें आपका ही इंतजार था। राजा की बात पर कोई भी कुछ और जवाब दे पाता उससे पहले ही महात्मा गुरुजी की आवाज वहां पर गूंजी, जिससे कि सभी का ध्यान उनकी तरफ हो गया और राजा तुरंत ही भागते हुए वहां पर आए और आगे आकर वो महात्मा के कदमों में गिर पड़े और उनसे लगभग विनती करते हुए बोले, हमारी मदद करिए महात्मा, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे बच्चों को राजमहल वापस ले आइए, हमारी रानी को पहले की तरह स्वस्थ कर दीजिए। हमसे अब ये सब और देखा नहीं जा रहा, हम खुद को जीवन में पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। महात्मा मणिकनाथ के कदमों में पड़ा हुआ राजा महेंद्र प्रताप विनती करते हुए रो रहा है। तभी महात्मा ने झुककर उसके दोनों कंधों को पढ़कर उसे उठाते हुए कहा, उठ जाइए महाराज, आपको इस तरह से विनती करना शोभा नहीं देता। आखिर आप हमारे राज्य के महाराज हैं और हम सब आपकी प्रजा, हमारी रक्षा करना आपका धर्म है, और अगर आप ही इस तरह से असहाय होकर विलाप करेंगे तो फिर बाकी सब किससे उम्मीद रखेंगे। महात्मा की बात सुनकर राजा उठकर खड़े हुए और फिर वो महात्मा के साथ वहां से जाकर बात करने लगे। सारे लोग राजा की ऐसी हालत को देखकर हैरानी में थे। सक्षम भी वहां पर किनारे अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन शिवानी वहां पर नहीं है, क्योंकि उसे वहां पर आने की अनुमति नहीं है। सजा के तौर पर उसे इन सब चीजों से दूर रहना है, और सबसे अलग कोई और उससे मिलने जा सकता है, लेकिन वो सभी के बीच नहीं आ सकती। दूसरी तरफ, हमारा सिर कहाँ, कहाँ पर है हम? होश में आते ही अपना सिर पकड़कर वहां उसी पत्थर पर उठकर बैठते हुए वसुंधरा बोली, जिस पत्थर पर अब तक वो बेहोश लेटी हुई थी। उसने खुद से ही ये सवाल किया, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। उसकी बात का जवाब देने के लिए कोई भी वहां पर नहीं है, लेकिन इस वक्त वो किसी भी तरह के बंधन में नहीं है। वो एकदम सीधी तरह से उठकर बैठ गए। उसे अपने हाथ पैर बंधे हुए नहीं लग रहे हैं और वो इन्हें इधर उधर हिला डुला सकती है। उसे पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और आगे की तरफ कुछ कदम चली। क्या हुआ था हमें? क्या हम जिंदा नहीं हैं? हम किस जगह पर हैं? वो तो हमें गुस्से में मार ही डालने वाला था। क्या उसने हमें छोड़ दिया? नहीं, वो शैतान भला हमें क्यों छोड़ेगा? उसने तो हमारा गला दबा दिया था। इतना बोलते हुए वसुंधरा ने जल्दी से अपने गर्दन पर हाथ रखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई जख्म के निशान महसूस नहीं हुए और ना ही उसे कहीं पर दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बेहोश होने से पहले जिस तरह विक्रांत ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाया हुआ था, वो सब कुछ वसुंधरा को बहुत अच्छी तरह से याद है, और साथ ही किस तरह से उसके नाखून वसुंधरा की गर्दन में अंदर तक धांसते जा रहे थे, और वसुंधरा को ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी उसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें सब कुछ एकदम अच्छी तरह से याद है। उसने हमारा गला कसकर दबाया था और वो हमारी जान लेने ही वाला था। फिर हम जिंदा कैसे बच गए? वो भी बिल्कुल सही सलामत। खुद से बातें करते हुए वसुंधरा ने फिर से ये बात बोली। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में इस वक्त जिंदा इस गुफा में खड़ी है जहां पर कुछ देर पहले विक्रांत उसे जान से मारने वाला था। उसे ये भी नहीं पता वो कितनी देर से बेहोश थी और विक्रांत इस वक्त कहां पर है, और सबसे बड़ी बात, उसने वसुंधरा को इस तरह से खुला क्यों छोड़ा हुआ है। वसुंधरा ने सोचा कि अगर वहां पर कोई भी नहीं है तो वो इस बात का फायदा उठाते वहां से निकलने की कोशिश करती है, इसलिए वो वहां से एक तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी जहां से उसे कुछ रोशनी अंदर आती हुई नजर आ रही थी। नहीं तो उस पूरी जगह पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। कहानी जारी है। विक्रांत ने वसुंधरा को ऐसे खुला क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों वो उसे बांधकर नहीं गया? और कहाँ है विक्रांत? महात्मा कैसे करेंगे राजा की मदद? और क्या शिवानी सक्षम वीरेश को ढूंढने के लिए आश्रम से बाहर जाएंगे? और क्या गुरुजी इस बात की अनुमति देंगे उन लोगों को? और कहाँ है चंद्रिका और वीरेश?